और इसके बरक्स कोई कहता है रब्बना तीना फि दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अजाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते हुए देर नहीं लगती। ये दुआ आप सबको आती होगी। नबी सल्लम कसरत से ये दुआ मांगते थे, और तवाफ में अगर आप देखें तो रुकने यमानी से लेकर जो आखिरी चक्कर शुरू होता है, आखिरी हिस्सा, उसमें यही दुआ कसरत से मांगी जाती है। सवाल पैदा होता है कि हसना क्या होता है? रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, कुछ भी दुनिया मिल जाए, कोठी बंगला घर, ये हसना नहीं है। हसना क्या होता है कि दुनिया की नेमत अल्लाह की रजा के साथ मिले, हराम तरीके से ना मिले। सवाल बड़ा कड़ा है, लेकिन खुद से कर सकते हैं। क्या मेरे पास जो कुछ है ये हसना है, अल्लाह की रजा का घर है, रिस्क हलाल है? घर लिया तो अल्लाह की नाफरमानी से तो नहीं लिया? आप देखेंगे कि जब हम खुद अपनी लिस्ट बना लेते हैं तो फिर हमें बहुत ज्यादा क्यामत के दिन हैरत नहीं होगी, क्योंकि जो दुनिया में अपना हिसाब कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए वहां आसानियां कर देता है। इसी तरह आप देखिए कि जो आखिरत की हसना क्या है, जन्नत और अल्लाह ताला का दीदार। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया की वो नेमतें हमें दे कि जिसके बाद अजाब ना हो। हजरत अली ही का एक और कौल याद आ गया, कहते हैं मैं उस दुनिया की क्या तड़प करूं कि जो हलाल से मिले तो हिसाब होगा, हिसाब तो होना है ना, और अगर हराम से मिली तो अजाब होगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें दे रिस्के हलाल और फराख, और वो दे कि जिसको हम फिर दोबारा अल्लाह के रास्तों में डाल सकें। फिर इंशाल्लाह दुनिया नुकसान नहीं देगी। इसके बरक्स आप देखिए कि दुनिया की कोई नेमत भी अगर आपने मैंने ले ली और कल उसकी जगह वजह से पकड़े गए तो क्या होगा? एयरपोर्ट को जेहन में ले आए, आप बड़े बड़े सामान के सूटकेस भर के ले आए और एयरपोर्ट की लाइनों पर खड़े हैं और सामान ओवर है और मुश्किल हो रही है, तो उस वक्त खुशी होती है? या अल्लाह ना करे कोई ऐसा सामान आपके और मेरे सामान से निकल आए जो मना था, प्रोहिबिटेड था। ये दो ही पाबंदियां जहन में रख लें, क्यामत के दिन की भी दो पाबंदियां, ओवर वेट ना होना और कोई प्रोहिबिटेड आइटम ना लेकर आना। ओवर वेट क्या है? दुनिया हलाल है लेकिन इतनी ले ली कि उसी में खुब गए, अल्लाह को मुत्तका सर। और प्रोहिबिटेड आइटम क्या है? कोई ऐसी चीज हमारी कमाई में, हमारे सामान में निकल आई जो अल्लाह ने मना की हुई है। तो अल्लाह ताला हम सबको क्यामत के दिन की रुसवाई से बचाए। फरमाया ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते देर नहीं लगती। ये गिनती के चंद रोज हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके दो ही दिन में वापस हो गया तो कोई हरज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हरज नहीं। ये मीना के दिनों की तरफ इशारा है, बशर्ते कि ये दिन इसने तकवा के साथ बसर किए हों। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक रोज इसके हजूर तुम्हारी पेशी होने वाली है। अरफा के दिन जितना ये जुमला याद आता है ना, शायद ही कभी आता हो। ऐसे लोग एक मैदान में खड़े हैं, वकूफे अरफा जिसको बोलते हैं, इसी तरह क्यामत के दिन हम सब खड़े होंगे। आप बताए कि क्यामत के मैदान में इतने लोग होंगे के बैठने की जगह नहीं होगी, रिवायत में तो सिर्फ दो पांव रखने की जगह मिलेगी, कंजस्टेड, और खड़े हैं और खड़े हैं और खड़े हैं और खड़े हैं, हिसाब भी नहीं शुरू हो रहा। फिर नबियों को बुलाया जाएगा, सिफारिश कराई जाएगी, होते होते आखिर में नबी सल्लम मानेंगे और फिर आप आके सिफारिश करेंगे अल्लाह से, फिर हिसाब शुरू होगा। अजाब सवाब बाद की बात है, अभी हिसाब भी नहीं शुरू हो रहा। तो आज दुनिया में हम बहुत तड़प रखते हैं, बहुत कुछ हो, हैवी ड्यूटी चीज़ें हो, बड़ी बड़ी चीज़ें, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें, क़यामत के दिन जब चुकानी पड़ेंगी, उसका बदला देना पड़ेगा तो क्या होगा? एक सहाबी थे, उनको एक मौके पे दिल में ख्याल आ गया कि अल्लाह के नबी ने माले गनीमत में से मुझे कम दिया, दूसरों को ज़्यादा दिया। बात आप तक पहुँच गई, आपने उनको बुलाया, कहा एक पत्थर लेकर आओ, काले रंग का, ले आए। कहा इसको धूप में रख दो, सारा दिन वो धूप में जलता रहा। फिर कहा अब इस पे खड़े हो जाओ और मुझे गिनवाओ कि तुम्हें न क्या क्या मिला। अब वो खड़े हुए, इतने पाँव जले, सिर्फ एक पाँव रखा, कहा तलवार दी, फिर पाँव उठाया तो दूसरे में कहा तीर दी। अभी दो तीन चीज़ें गिनवा सके कि गिर के बेहोश हो गए, और मक्का के गर्म पत्थर आप जानते ही होंगे। जब होश आया तो फिर कहा सोचो, आज चंद चीज़ें इस चलते हुए पत्थर पे नहीं गिनवा सके, क़यामत के दिन क्या होगा जब सूरज इतना करीब होगा और ज़िंदगी भर की नेमतों को गिनवाना पड़ेगा। तो अल्लाह ने थोड़ा दिया तो शुक्र कीजिए, सस्ते बच गए, छुट गए। ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये जिम्मेदारी हैं, अल्लाह ताला हमें सुरखरू कर दे। इंसानों में कोई ऐसा भी है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं, व युश्किदुल्लाह अला मा फी कल्बिही, और अपनी नेक नियति पर वो बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब इसे इक्तदार हासिल हो जाता है तो जमीन में इसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे, हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को पसंद नहीं करता। जहन में कोई सियासी लीडर आ रहा है, पहले दावे वोट लेने से पहले, लेकिन जब इसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो और तो अपने वक्कार का ख्याल इसको गुनाह पर जमा देता है, ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफी और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों में कोई ऐसा भी है, इसको हाईलाइट कर ले। पहला कौन है कि जो सिर्फ दुनिया का राज, दुनिया पाने वाला है, जिसको लेना है, बड़े बड़े दावे करके पोजीशन ले लेता है और बाद में फसाद करता है, लेकिन एक वो है जो अल्लाह की रजा में सब कुछ खपा देता है। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا میں اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب رومی کا نام آتا ہے اس آیت کے ساتھ۔ ہجرت کے لیے نکلے تو گھر والوں نے کپڑے مال سب کچھ لے لیا، تن کے کپڑے بھی برے نہیں تھے جب اللہ کے نبی کے پاس مدینہ میں پہنچے۔ کہا اللہ کے نبی صرف اپنا ایمان بچا کے آ گیا ہوں۔ आपने खुशखबरी दी कि आपने नफ़े का सौदा किया। आज मैं और आप सोचें, अगर हमें भी इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती, और आज तो हम कुर्बानियों के मौक़ों को समझते ही कोई नहीं, हम कहते हैं ये हमारे लिए तो है ही नहीं है, तो जो सच्चा होगा अल्लाह के रास्ते में वो हर कुर्बानी देकर भी वो काम कर जाएगा, और जिसको जान बड़ी प्यारी है फिर वो कहते हैं ना वो यहीं से पलट जाए जिससे जान हो प्यारी। अगली आयत को अपने दिल पे लीजिए, बहुत ही प्यारी आयत है, ये भी इंशाल्लाह आयत तदब्बुर में आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगो जो ईमान लायो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधे अंदर आधे बाहर ना रहो। क्यों भाई, आप एक पाँव धूप में रखें और एक अंदर एसी में रखें, बीमार हो जाएंगे। किसी शख्स को सोचिए कि दरिया के किनारे और एक पाँव कश्ती में रखें और एक खुश्की पर रखें और कश्ती चल जाए, खतरा होगा ना। ये है वो हालात जिससे आज उम्मत मुस्लिमा का कसीर तबका दोचार है, पूरे नहीं दाखिल होना चाहते इस्लाम में, कहते फिर टू मच हो जाएंगे। अच्छा दुनिया का कोई काम करेंगे कहेंगे परफेक्शनिस्ट, और दीन का काम को पूरा करें कहते एक्सट्रीमिस्ट, ये टू मच है। दुनिया का कोई काम करें जान लगा देंगे, और दीन का काम आए तो कहते हैं जान छुड़ाओ, बस छोड़ दो ना दीन का ही मामला है, पूरे आएंगे तो अच्छे लगेंगे। और जब आप पूरा दीन लेते हैं ना तो आप सिक्योर हैं। देखिए जब कोई किनारों पे होता है ना, कश्तियाँ डूबती हैं तो किनारों वाले लोग पहले डूबते हैं, मिडल पार्ट वाले लोग सेफ होते हैं। इसी तरह आप देखिए कि दीन का असल हुसन उन लोगों को आता है जिनकी पूरी जिंदगी दीन पे है, बाकी तो बेचारों का हाल बुरा ही है। ये तसव्वुर में लाइए रोटी को या पिज़्ज़ा ले लीजिए, किनारों से पिज़्ज़ा सख्त लगता है ना, फिर खाते जाए तो मिडल में क्या होता है, वह आखिरी बाइट आपने बचाई होती है, हाँ कि आखिर में खाऊंगी जिसमें चीज़ भी है और उसमें स्टफ भी है, वो सबसे सॉफ्ट और टेस्टी होता है, और अगर वो पहले से आके उठा के खा जाए तो बुरा लगता है। बस बच्चे किनारे छोड़ देते हैं कि माँ खा लेगी, हाँ किनारे सख्त थे बीच में सॉफ्ट था। इसी तरह जो लोग अधूरा दीन रखते हैं ना उनको दीन टू हार्ड लगता है, सो हार्ड, अल्लाह इतना नहीं है, नहीं नहीं रोज़े नहीं रख सकते इतनी गर्मी है, तौबा। उनको नमाज रोज़ा भी मुश्किल लगता है, बाकी चीज़ें तो पीछे कर दीजिए। लेकिन जब आप पूरे दिन में आपका उठना बैठना सोना जागना घर का माहौल आपके हस्बैंड आपके बच्चे आप सब एक रंग में रंगते हैं ना, फिर आप इंजॉय करते कहते वाह इस्लाम इज सो नाइस। तो आज उम्मत मुस्लिमों का ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी नोट कर लें, पूरा नहीं लेना चाहते, खौफ आता है, कहते हैं पूरे हो गए तो शायद मौलवी लगेंगे, पूरे हो गए तो शायद दुनिया से कट जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं वला तत्तबी खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्व मुबीन, देखो शैतान की पैरवी न करो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो साफ साफ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है अगर इनको पा लेने के बाद फिर तुमने लगजिश खाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीम व दाना है। इन सारी नसीहतों और हिदायतों के बाद भी जब लोग सीधे ना हो तो क्या वो इस बात के मुंतजर हैं कि अल्लाह ताला बादलों के छत्तर लगाए हुए या फरिश्तों के परे साथ लिए हुए सामने आ मौजूद हो और फैसला तो कर डाला जाएगा, यानी जो लोग आज भी नहीं मान रहे क्या वो क्यामत का इंतजार कर रहे हैं। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे मामले बिलआखिर तो अल्लाह ही के सामने पेश होने वाले हैं। बनी इसराइल से पूछो कैसी खुली खुली निशानियां हमने इनको दिखाई हैं। कहाँ देखी हैं आपने भी? पहले पारे में वादी ती में क्या कुछ हुआ था? बादलों का साया था और बहुत सारी चीजें और इसी तरह की और चीजें। और फिर ये भी इन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम इसको बदबख्ती से बदलती है, इसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है? जिन लोगों ने कुफर की राह अख्तियार की है, इनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब और दिल पसंद बना दी गई है। हाईलाइट करेंगे, काफिरों को ये दुनिया खूबसूरत लगती है, मोमिन के लिए तो दुनिया एक सख्त चीज है। ऐसे लोग ईमान की राह अख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क्यामत के रोज परहेजगार लोग ही इनके मुकाबले में आली मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिस्क, तो अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बेहिसाब दे। इब्तदा में लोग सब एक ही तरीके पर थे, कौन से? लिख लीजिए तौहीद के। फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रूनमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवि पर बशारत देने वाले और टेढ़े रास्तों पर चलने के नताइज से डराने वाले थे, और इनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनमा हुए थे इनका फैसला कर ले। और इन इख्तलाफात के रूनमा होने की वजह ये ना थी कि इब्तदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तलाफ इन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो नबियों पर ईमान ले आए, इन्हें अल्लाह ने अपने इज़्ज़त से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था, और अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है। 3 सेकंड के लिए अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी रास्ता दिखा दे, थक गई हूँ भटक भटक के, अल्लाह मुझे अब और गुमराह नहीं होना, तो मुझे अपने रास्ते पे ले आ। और अल्लाह के रास्ते पे जब इंसान आता है ना, तो उसको एक तड़प लग जाती है कि मैं जन्नत में जाऊँगा कि नहीं। तो अल्लाह ताला अगली आयत में खबर देते हैं, अम हसिब तुमन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और अभी तो तुम पर वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पहले ईमान वालों पर गुजर चुके। उन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आई, हिला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथी जो उसके साथ थे वो पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। इस वक्त इनको तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब है। अपने ऊपर लीजिए। लोग कहते हैं आज के दौर में इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, क्या होता है? जरा अपने से क्वेश्चनिंग कीजिए। उम्मत मुस्लिमा का आज एक ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, कहते हैं हम अमल नहीं कर सकते। क्या कहते हैं लोग? नहीं, वो फिर एयरपोर्ट पे सख्ती होती है और फिर जॉब्स नहीं मिलती, फिर इंटरव्यू सख्त लेते हैं, और फिर वो हमारी एयरपोर्ट पर जूतियाँ उतरवाते हैं, फिर हमारे कोट्स उतरवाते हैं। आपने ये शोशे सुने हैं लोगों से? चलिए, ये सब मैं नहीं मानती इनको, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन ये भी हम मुसलमानों की ज्यादती है जो हम सोचते हैं। सबकी वो ले रहे होते हैं, आपकी भी ले लेंगे तो क्या बड़ी बात है? वो सबको मसाज करते हैं, थोड़ा सा आपको भी कर देंगे तो क्या बड़ी बात है? कितना मजा आता है उस वक्त जब वो मसाज करते हैं। सबको पता है कि सफर से पहले एक रात आप जागे ही होते हैं। मैं तो हमेशा उनको यही कह के आती हूँ, कभी जहां होती है सबको करे तो कहती है गुड मसाज, तो वो फिर हंसती हैं आगे से। ऐसे ही है ना, अपने दिल से ये कॉम्प्लेक्स निकाल दें कि बिकॉज आई एम मुस्लिम दैट्स वाई दैट हैपन टू मी, बिकॉज दिस। कुछ कहते हैं फोन पे बात बड़ी अच्छी की उन्होंने, फिर जब गए तो फिर नो कह दिया क्योंकि मैं स्काफ लेके गई थी। ये निकालना पड़ेगा इस दौरे कुरान में। हम कुछ भी ना ले सके ना इस साल के दौरे कुरान से, तो हमने वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम का ख्याल निकालना है। नो, आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम। जब घर से आप हारने की नीयत से जाएंगे तो आपको कौन जितवाएगा? बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम अल्लाह की नहीं मानते ना, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में दूसरों का रोब डाल देता है। चलिए ये सब मान ले, हो गया, तो वो सोचिए जो बीबी सुमैया के साथ हुआ, जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया गया, एक पांव एक ऊंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। जो बीवी आसिया के साथ हुआ, अपने ही शौहर ने हाथों पांव में कील ठोक के सूली पे चढ़ा दिया। बिलाल जो कोयलों पे दहकाए जाते थे, वो बड़ा है कि आज का बड़ा। आज तो कर्टसी का दौर है, रिलीजियस फ्रीडम है, पावर ऑफ स्पीच है। आज तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंड सेट है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उनको तो इतना कुछ हुआ और तुम इतनी छोटी सी बातों पे घबरा जाओगे, तो याद रखो कि फिर तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। फरमाए लोग पूछते हैं हम क्या खर्च करें, जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिसकीनों पर और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह इससे बाखबर होगा। देखिए सहाबा के सवाल क्या होते थे, क्या खर्च करें। आज अमूमी तौर पे लोगों का सवाल क्या होता है, क्या ना खर्च करें। अच्छा वो डोरियों का वजन तो काट लेंगे ना ज्वेलरी में से ज़कात देते हुए। अच्छा स्टोन्स का वजन तो निकलेगा ना। अच्छा नए सोने का रेट लगाएं ज़कात में के पुराने का। इस तरह से अमीन मेक करके अल्लाह के साथ कंजूसी के साथ मामला करते हैं कि मैं सोचती हूँ कि फरिश्ते भी देखते होंगे कि अल्लाह ये तेरा बंदा कैसा है। लेकिन साहबा कहते थे अल्लाह के नबी हम क्या खर्च करें, तो अल्लाह ने इतने प्यारे तरीके बता दिए। ये नहीं बताया क्या खर्च करें, ये बता दिए कहाँ खर्च करें। और इसी तरह एक साहबी थे, वो कहते हैं देखो अल्लाह ने जो खर्च की जगह बताई हैं, ना इसमें तबला है, ना इसमें सरंगी है, ना इसमें बांसुरी है। मतलब क्या था कि मुसलमान का माल किसी नाफरमानी की चीज़ में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुम्हें जंग करने का हुक्म दिया गया है और तुम्हें नागवार है, हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। इस आयत को हाईलाइट करें, आसान तक रहो शयन बहु व खैरुल लकुम, ये आगे भी आएगी तो यहीं समझ लीजिए इसको, आसान तक रहो शयन बहु व खैरुल लकुम, और हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ नापसंद गुजरे जबकि वह तुम्हारे हक में अच्छी हो। आसान तो हिब्बु शयन बहु व शर्रुल लकुम, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो बुरी हो। ताकि ये फितरत का असूल है। अमूमन लोगों को क्या अच्छा लगता है, आसानियाँ। आसानियों में इंसान सुस्त पड़ जाता है। सेहत अच्छी लगती है ना बीमारी की नस्बत, हालांकि बीमारी में गुनाह चढ़ते हैं। बच्चों से पूछिए चॉकलेट अच्छी लगती है दांत खराब होंगे, कोक अच्छी लगती है दूध अच्छा नहीं लगता। तो जिंदगी में जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं ना वही अच्छा हो। आप अपने बच्चों को भी ये असूल देते ही होंगे, लेकिन अपने भी अल्लाह के मामले में याद रखिए कि अल्लाह के फैसलों पर राजी हो। जिंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे मुश्किल हालात से आप गुजरेंगे कि आपको लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पास खैर ढूंढिए। एक वाक्य आता है सही बुखारी में, एक औरत है काली माई, वो अपना वाक्य सुनाती हैं। किसी भी कबीले में रहती थी, मदीना के करीब वो बसती थी। तो कबीले की जो कोई भी था, औरत था या मर्द, उनमें से किसी का हार चोरी हो गया। कोई कहता बेल्ट चोरी हो गई, कोई ज्वेलरी चोरी हो गई। उन्होंने इस औरत पे शक किया क्योंकि ये लौंडी थी। उन्होंने इसकी तलाशी ली और जिस्म के खुफिया हिस्सों की भी तलाशी ली, हालांकि इसने वो चोरी नहीं की हुई थी। इससे इसका दिल खट्टा हो गया, कुफर पे थी, लेकिन इसने अपने गुमान के मुताबिक दुआ की अल्लाह से कि ऐ रब तू है अगर तो मुझे इनके सामने सुरखरू कर दे, मैं इनके पास अब नहीं रहूंगी। अल्लाह ने उस औरत की दुआ सुनी, आसमान से एक उड़ती हुई चील आई, ईगल, और उसने सबके सामने वो हार या वो बेल्ट जो थी वो फेंक दी। वो कहीं से उठा के ले गई हुई थी और उसने आके फेंक दी। सब ने जब देखा तो वो शर्मसार हो गए, माफिया मांगने लगे, हमें माफ कर दो। कहने की माफी वगैरह कोई नहीं है, बस मुझे आजाद कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा खुशी से जाओ, जो लेना ले जाओ। अब ये औरत सर पे गठरी रख के जा रही है, मैं किधर जाऊं कुछ नहीं पता। और इसी तरह मदीना में आ गई, मस्जिद नबी के पास आई, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। जब आपको पता चला ये एक औरत है, बेघर है, आपने मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा चबूतरा उसके लिए डलवाया, वो उसमें रहने लगी। मुसलमानों का तर्ज अमल देखा तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। सारा दिन मस्जिद नबी साफ करती, खिदमत करती, और जब फारिग होती तो आपकी बीवियों के पास आके बैठ जाती। और हजरत आयशा कहती हैं कि जब वो औरत हमारे पास बैठती तो एक शेर बहुत पढ़ती थी, और उसका खुलासा क्या था कि वो हार की चोरी का दिन मेरे रब की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी थी कि जो मुझे कुफर के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में ले आई। ये है आसान तक रहो शयन व हुवा खैरुल लकुम, ये असूल पल्ले से बांध लें। जो मुश्किल आप पे आएगी बाद में खैर होगी। और मैं इसको फिर अपने इसी थीम से जोड़ दूं, आज हम मुसलमानों पे जो हालात है ना, हर तरफ ही हमें बातें सुननी पड़ती हैं, ये है तो बड़े नागवार, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा हो रहा है। और वो क्या, हमारी यूथ के अंदर ग्रह जा रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि वो जाग उठे हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह फिरौन के जुल्म से निकलने के लिए बनी इसराइल बेचैन थे ना, आज हमारी यूथ बातें नहीं सुन सकती। यहाँ बड़े लोगों को आप देखिए तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन बच्चे नहीं करेंगे। शर्त एक है कि हम ताल्लुक बिल्ला मजबूत रखें। तो जिंदगी में हर चीज आपकी मेरी मर्जी की नहीं होगी। फरमाए लोग पूछते हैं माहे हराम में लड़ना कैसा है, कहो इनसे कि इसमें लड़ना बहुत बुरा है मगर अल्लाह की राह से रोकना और अल्लाह से कुफर करना और मस्जिद हराम का रास्ता अल्लाह को मानने वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है और फितना तो खून रेजी से ज्यादा शदीद तर है। यदि खुद इतने बड़े बड़े जुर्म किए कुफारे मक्का ने उसको भूल गए और मुसलमानों के हाथ से कत्ले खता हुआ तो उसको शोशा बनाया। आज भी ऐसे खुद जो मर्जी कर दें बस्तियों की बस्तियां तबाह हो जाएं लेकिन मुसलमान की छोटी सी बात पकड़ी जाती है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो जो बाट दूसरों के लिए वही तुम्हारे अपने लिए होने चाहिए। वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे हत्ता कि अगर इनका बस चले तो तुम्हें इस दीन से फेर ले जाएं। और खूब समझ लो कि तुम में से कोई इस दीन से फिरेगा और कुफर की हालत में जान लेगा जान देगा तो इसके अमाल दुनिया और आखरत दोनों में ज़ाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम में रहेंगे बखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार और जिहाद किया अपना अल्लाह की राह में घर बार छोड़ा और जिहाद किया। एक एक चीज़ पे हाईलाइट कीजिए, क्या हमने ये सब किया? चंद बातें तदब्बुर की, क्या मैं ईमान लाई अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक है, क्या अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, किसको छोड़ना है, नापसंदीदा ख्वाहिशात को छोड़ना है, आदतों को छोड़ना है और ज़रूरत पड़ी तो जोगों को भी छोड़ देना है, और क्या मैंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, कैसे करना है, कलम पकड़ के नफ्स के साथ भी जिहाद करना है मुआशरे से भी करना है। फरमाए ये सब कर लोगे तो उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, ये हैं वो लोग जो अल्लाह की रहमत के जायज़ उम्मीदवार हैं और अल्लाह इनकी लग्जिशों को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से इनको नवाजने वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर दे। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है, कहो इन दोनों चीज़ों में बड़ी खराबी है अगर जिन में लोगों के लिए कुछ नफ़ा भी है मगर इनका गुना इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। यह है पहली आयत तरतीब के एतबार से शराब की हुरमत की। अरबों में शराब पानी की तरह पी जाती थी, करते क्या थे कि शराब के नशे में खूब सदका खैरात करते, अपने ऊँट ज़िबा करके मस्कीनों को खाना खिलाते, इसी तरह जुआ खेलते गैमलिंग और उससे जो माल हासिल होता था उससे जाके बड़ी बड़ी दावतें पकाते। जब लोग उनको आके मना करते कि ऐसा क्यों करते तो कहते देखो हम ये शराब पीकर अच्छे काम करते ना, जिसको कुरान या इस्लाम उम्मुल खबाइस कहते हैं ये शराब को करीमा कहते थे, करीम कहते हैं जनरस को, कि शराब के खान यानी हम नशे में पड़ के बहुत अच्छे काम करते हैं अल्लाह ने आयत उतार दी। ये बिल्कुल वही कहानी है कि आज लोग कहते हैं फॉर अ गुड कॉज, ये कॉन्सर्ट क्यों कर रहे हो फॉर अ गुड कॉज, क्या होगा इसका पैसा जलजला जदगान को जाएगा, और ये काम क्यों कर रहे हैं भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है ये आपने क्या किया हुआ, कहते नहीं इसके बदले इसके बाद हम वहाँ इस पैसे से जाके मुजाहिदीन की मदद करेंगे। देखिए ये धोखा है शैतान का, फूड फॉर गुड कॉज गलत काम कभी नहीं हो सकता। तो कभी भी किसी चीज़ से फ़ायदा भी हो ना तो ये सोचिए कि अल्लाह की रजा के मुताबिक वो काम किया है कि उसकी नाराज़गी से किया है। फिर दोबारा आ गया सहाबा का सवाल कि हम क्या खर्च करें, तो फरमाया पूछते हैं हम राह खुदा में क्या खर्च करें, कहो जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है। इसको हाईलाइट करें, इस एक आयत पर अगर हम अमल करें ना तो जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सब सदका, ना आप रात का खाना रख सकते हैं ना आप कपड़े रख सकते हैं गर्मी सर्दी के, और अगर हदीस से काट कर कुरान को सीखेंगे तो ऐसे ही होगा, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ दर्जे बता दिए गए कि कभी ज़रूरत से ज़ायद सब दे दो और कभी रख भी लो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है शायद कि तुम दुनिया और आखरत दोनों की फिक्र करो। पूछते हैं कि यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, कहो जिस तर्ज अमल में इनके लिए खैर हो। देखिए पिसे हुए तबके की अल्लाह मदद कर रहे हैं और वही तरीका इख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और इनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मुजायका नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है, अल्लाह चाहता है तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। आप देख रहे हैं कि जब से आयत बिर गई है उसके बाद से छोटी छोटी नेकियों का जिक्र है ना, قصاص سے لے کر وصیت، پھر حج اور عمرے کے مسائل، پھر قتال کی باتیں. اب اس سے اگلا حصہ جو ہوگا یہ معاشرتی معاملات ہیں، جس میں نکاح اور طلاق اور عدت کی باتیں. انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے اللہ کے حکم سے. اور اس حصے کی اب ہم تلاوت سنیں گے. آپ میں سے جو سسٹر اٹھنا چاہیں جا سبھی جا سکتے ہیں، بیسیکلی ہم اپنے لیے کرنے لگے ہیں. اور جو سسٹرز یہاں سے نکلیں گے تو وہ بعد میں چاہیں تو گھر میں خود سے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. جو بیٹھ سکے ساتھ موسٹ ویلکم بیٹھے. انشاءاللہ ایک دو دن کی سیٹنگ کے بعد ہم یہ سارا حصہ ایک ہی وقت میں کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ آج پچھلا حصہ بھی تھا تھوڑا سا پارے کا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی کر دے. آئیے تلاوت سنتے ہیں، اور آپ سب نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت بر سے شروع کریں گے 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من كيف قلت يا عبدو؟ ولكن البر من آمن بالله والملائكة والملائكة والنبي والمسيح والمساكين وابن السبيل والصائمين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والهم يهديهم إذا أرادوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين العبد بالعبد والأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم على فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فمن تطوع خيرا فإن خير لكم خير لكم إن كنتم صادقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو سفرا فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتحملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهل لكم لحفظ رب سيدنا سائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لعلكم لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالهم بينهم ولا تدعوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله والله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله دونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث سقفتموهم أخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك تذكركم فينتهي النار أكبرها فيه. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة تكون الدين إلا فإن انتهوا فما كان إلا على الظالمين. الشهر بالشهر بالشهر الحرام والحرمات قصاص واتقوا الله واعلموا أنكم على المتقين. وأنفقوا في سبيل الله فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واقسطوا إن الله يحب المحسنين. فإن أحبكم فمن يتبع فإن أقسطتم فما استيسر لا تدركوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محلة. فمن كان منكم مريضا أو مرضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم جاتا تلك عشرة كاملة ذلك من لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم قبله لمن الضالين ثم عفيدوا من حيث قعد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول آمنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم أجرهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا وسريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودة فمن تبدل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقى الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبك الحساب وإذا تولى أسعى موسى في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة فحسبه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما اكتسبتم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا ما عملياته ففي ظلل من القوام والملم قد قضي لهم وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم الدنيا ويذكرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول قل الرسول بالذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما الأقربين يطعم والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يعلم أنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله من أكبر الله والفتنة أكبر من القتل فلا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا منكم عن دينه فيبت وهو كافر به فحبط تماما إلى ذلك فبناهم في مكان إن الله آمن ويذهب إلى الجهاد في سبيله بدون رحمة الله سبحانه عن الجهاد الحمد لله كر لي سب الحمد لله جزاك الله خير صلی سبحانہ ہمارا پارا ہو گیا تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں جو بھی ہو تو کل ملیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.